दीक्षांत ने 5 मिनट का पोज लेने के बाद माही की तरफ रुख करते हुए कहा, पढ़ लिया एग्रीमेंट? माही ने हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें एग्रीमेंट पर दौड़ाई। उसमें कुछ खास नहीं देखा था, बस नॉर्मल सी शर्तें लिखी थीं कि उसे दीक्षांत के ऑर्डर फॉलो करने हैं और 3 साल तक वो इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद पीछे नहीं हट सकती है, और बाकी बेसिक रूल और रेगुलेशन लिखी थी। माही ने एग्रीमेंट टेबल पर रखते हुए कहा, यस सर, मैं रेडी हूँ इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। दीक्षांत ने स्माइल करते हुए उसके हाथ में पेन पकड़ा दी, और माही ने जैसे ही साइन करना चाहा उसका हाथ कांप गया, जैसे उसका हाथ पहले से उसे आगाह कर रहा हो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। लेकिन माही ने उसे नज़रअंदाज किया और कांपते हाथों से ही सही, लेकिन अगले 2 मिनट में उसने साइन कर दिया। उसे देखकर दीक्षांत ने वो एग्रीमेंट लिया और फिर उसे देखकर शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि माही अपनी जगह खड़ी खड़ी ही कांप चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान जी प्लीज, मैंने आज से पहले ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है सिवाय अपनी जॉब एग्रीमेंट के। मुझे पता है कि आसान नहीं होगा, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं जितना दीक्षांत सर बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमर की गाड़ी एक जोरदार ब्रेक के साथ रावत मेंशन के सामने जाकर रुकती है, और फिर वो तेज कदमों से गाड़ी से बाहर निकलता है। फिर वो दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलता है जिसमें उसने खूबसूरत सा बुके रखा था, और वो पूरा वाइट गुलाबों से भरा था। उसकी बीवी को वाइट रोजेज बुके बहुत पसंद था, ये उसे पता था। वो उस बुके को लेते हुए तेज कदमों से घर के अंदर आता है, जहां फिलहाल सिर्फ कल्याण सिंह जी मौजूद थे। रजत जी अपनी किसी काम से घर से बाहर जा चुके थे। अमर को इतनी जल्दी आते देख कल्याण सिंह जी ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ बरखुरदार, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? लेकिन उसके हाथों में फूल का बुके देखकर उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारे तो तेवर काफी ज्यादा सुधर गए हैं। अमर ने आंखें छोटी करते हुए कहा, कल्याण सिंह जी अपनी आंखें सही करवाइए, मैं तो शुरू से ऐसा ही था। बस आपने अपनी बहू को ढूंढने में थोड़ी देरी कर दी, अगर वो पहले आती तो मैं थोड़ा और जल्दी ऐसा हो जाता। कल्याण ने खुश होते हुए कहा, हाँ अब जल्दी से मुझे परदादा बना दे। अमर ने जबड़े कसते हुए कहा, बस सुबह शाम आपको यही नजर आता है, कितने बेशरम हैं आप। अब मैं अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, हमें कोई डिस्टर्ब ना करें, बस ये ध्यान रखना। उसे जाते देख कल्याण सिंह जी का मुंह उतर चुका था, उनका पोता उन्हें पहरेदार बनाकर जा चुका था। अमर का कमरा। अमर ने अपने कदम जैसे ही कमरे के अंदर रखे, सबसे पहले उसे अपनी प्यारी सी बीवी की तलाश थी, लेकिन उसे जानवी कहीं नजर नहीं आई और अमर का चेहरा लटक गया। वो आगे बढ़ा तो उसे बालकनी में से जानवी का लहराता हुआ दुपट्टा दिख गया, और उसके होठों पर फिर से स्माइल आ गई। वो तेज कदमों से बालकनी के अंदर गया। जानवी का चेहरा सामने की तरफ था, वो खुले आसमान को देख रही थी। आज शाम के समय थोड़ी ठंड थी, जैसे बारिश होने वाली हो। अमर ने अपना गला सही करते हुए कहा, बच्चा? और जानवी ने झट से अपनी आंखें पोंछ ली, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे। अमर ने उसे जैसे ही ऐसा करता देखा, तेज कदमों से उसके सामने गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला, बच्चा तुम रो रही थी, क्या हुआ? वहीं जानवी की नजर अमर के हाथ में पड़े बड़े से बुके पर गई, और वो जल्दी से खुश होते हुए बोली, वाह कितने खूबसूरत हैं। इतना बोलकर उसने अमर के हाथों से वो बुके ले लिया और उन फूलों को छूकर देखने लगी, जो काफी फ्रेश लग रहे थे। अमर ने उसके हाथ से वो बुके लेकर साइड में रखते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम रो क्यों रही थी, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? जानवी ने जल्दी से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अमर बेबस होते हुए बोला, कुछ तो है बच्चा, वरना तुम फालतू में तो नहीं रो रही थी। मुझे बताओ, मैं अभी सॉल्व कर दूंगा, अगर तुम मुझे परेशानी ही नहीं बताओगी तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? जानवी ने अमर का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं है अमर, आप आइए मेरे पास बैठिए यहाँ। इतना बोलकर उसने सोफे पर जगह बनाई। अमर ने गहरी सांस लेकर उठते हुए कहा, पहले तुम बताओ कि रो क्यों रही थी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। जानवी ने शक पकाते हुए अपनी नजरों को फेर लिया और फिर अचानक ही बोली, वो पीरियड्स आए ना तो मेरी कमर में दर्द हो रहा है, बस इसलिए। उसके बोलने के लहजे से अमर समझ चुका था कि जानवी झूठ बोल रही थी, बात कुछ और थी, लेकिन वो पीरियड्स में है। इस वक्त उसे ज्यादा परेशान करना अमर को सही नहीं लगा, तो उसने उसके पास बैठते हुए कहा, ठीक है अभी के लिए मैं तुमसे कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ। इतना बोलकर उसने जानवी को हक कर लिया और फिर अपने हाथों से धीरे धीरे उसकी कमर पर मसाज करने लगा, जिससे जानवी ने सुकून से आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा अमर की गर्दन में छुपा लिया। उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस करके जानवी के दिल को ठंडक मिल रही थी, जहां पिछले आधे घंटे से जैसे आग सी लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब अमर को लगा बारिश होने वाली है तो उसने जानवी को अपनी बाहों में उठाया और उसे कमरे के अंदर ले आया। उसने जानवी को बेड पर बैठाते हुए उसका सर सहला कर कहा, भूख लगी होगी, बताओ क्या खाओगी? जानवी ने जल्दी से मुस्कुरा कर कहा, क्या आप मेरे लिए खाना बनाएंगे? अमर ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहा, जी मैडम बिल्कुल, बस ऑर्डर कीजिए, क्या खाएंगी आप? जानवी ने जल्दी से कहा, अभी बारिश वाला मौसम है तो मुझे चाय पकौड़े खाने हैं। अमर ने कहा, बस 15 मिनट इंतजार करो, मैं भी बना कर लाता हूँ। जानवी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, किसी और से मत बनवाना, मुझे आपके हाथ के बने हुए खाने हैं। अमर ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, जी देवी जी मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए, आपको अपने पति परमेश्वर के हाथों से बने ही चाय पकौड़ी मिलेंगे। वहीं ऑफिस में माही को देखशांत ने अलग से केबिन दिया था और उसके सामने बड़ी सी फाइलों की लाइन लगी थी जिन्हें सीरीज वाइज देखशांत रखते हुए बोल रहा था, इन सब का काम आज शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। माही को उन्हें देखकर लग रहा था इनका काम कंप्लीट करते करते उसे रात के 12 बज जाएंगे।